Krishna, 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 Hare Hare. शुरुआत में ही मैं हृदय से हमारे नासिक मंदिर के भक्तों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे लीला परी प्रभु यहाँ बैठे हुए हैं, श्री मारुति कांत प्रभु उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था की और कृष्ण भंड प्रभु ने बहुत सम्मति आशीर्वाद दिया और रुकुल महाजन प्रभु और मरिजी माता जी ने हमारे सारे टूर का इंतजाम किया और मैं नासिक मंदिर में ये मंदिर बनने के पहले से ही आ रहा हूँ। करीब करीब 30 से 31 साल हो गए और 30 से 31 साल में मंदिर था या नहीं था, लेकिन जो क्या कहते हैं उसको हॉस्पिटैलिटी, जो आदर आतिथ्य का जो अनुभव रहा वो सर्वश्रेष्ठ था। जो परमों से प्रभु यहाँ पर चाहिए और उसके बाद हमें भी शिक्षा सब चल रहे हैं, लेकिन ट्रैवलिंग में रहते हैं कृष्ण धन प्रभु, सब लोगों ने मिलकर ये जो धरोहर है लेगेसी उसका बहुत सुंदर तरीके से वृद्धिंगत तरीके से इंक्रीजिंग वे इस हरे कृष्ण आंदोलन को इस कौन मासिक में फैलाया है और इसके कारण अभी हमारे इस कौन मंदिर का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ समय बाद मंदिर छोटा पड़ गया। हाँ किधर भी जाओ, राधा गोपीनाथ मंदिर जाओ, शिव बिहारी पुणे में जाओ, अभी एन बी सी सी में भी जाओ, कितना भी विशाल जगह ले लो आप, लेकिन किसी भी के आचे सर्व नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार भैरव मरु नाम, आप कहा ना चाहिए कि होने वाला है हमारा अगर सहलाव रहेगा उसके अंदर तो हमारा सबसे बड़ा कल्याण से तो हमारा ही होगा उससे। तो ऐसे बहुत ही श्रेष्ठ सर्वोत्तम दिव्य आध्यात्मिक आंदोलन के हम सदस्य हैं। ये सबसे बड़ी कह रहे हैं ना सुकून की बात है, सिगरेट को लेस संसार दावा नल लीजे धोखा, इस तपते हुए भौतिक जीवन में हम ऐसे एक राहत देने वाले आंदोलन के सदस्य हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बात है, बड़ी भाग्य की बात है। पता नहीं कितने कितने जन्मों के पुण्यों का जो फल है जिसमें संतों की संगति प्राप्त हुई और संतों की परिचय हुआ, उनकी सेवा प्राप्त हुई, उनका अनुग्रह प्राप्त हुआ, धाम का परिचय हुआ, धाम यात्राएं होने लगी, भागवतम से परिचय हुआ, भगवद गीता से परिचय हुआ, प्रसाद से परिचय हुआ। सबसे लोगों का सबसे पहला परिचय प्रसाद से होता है और ये सब भाग्यों से अनेक भाग्य एकत्र होकर हमारे परम भाग्य को जागरूक किया, भगवत भगवान की ओर आकृष्ट होकर भगवान की भक्ति प्राप्त करने की इच्छा निर्माण होना ये सबसे पहली बात है। भगवान की भक्ति तो उपलब्ध है लेकिन उसको प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए ना, वो इच्छा किसी राधा मदन गोपाल जी के चरण में प्राप्त होती है। इतने बड़े सुंदर वातावरण में नहीं तो फिर हम लोग तपोवन के पत्थर भी बैठ सकते हैं, इसी कथा को लेकर वहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कितने लोग आएंगे, लेकिन राधा मदन गोपाल जी आकर बैठे हैं और बहुत सुंदर वातावरण है, बहुत दिव्य वाइब्रेशंस हैं स्पिरिचुअल, उसके वजह से जीवों के अंदर जो छुपी हुई कृष्ण चेतना है वो जागृत हो जाती है, इट बिकम्स एनलाइटेड स्पार्कलिंग। तो एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरी निजी जीवन के हैं आपके जो गौरवीताई जी हैं वो तो आपके ही हैं निश्चित रूप से, अगर वो हमारे लिए हैं ये कहने में मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। 1992 में मैं श्री वृंदावन धाम में फुल टाइम रहा एक साल सेवा करने के लिए, वहाँ से जब निकलने का समय आया तो मैंने स्वयं रोई बाजार में जाकर मेरे गुरुओं को प्राप्त कश्मकश कहते हैं ना उसको, संघर्ष, युद्ध, अशांति, इसमें चिना झपटी में गिरे हुए अमृत बिंदु है। लेकिन इससे परे एक मूल कुंभ मेला है, वो ये है कि महाभारत में लंबी कथा आती है, संक्षेप में बताते हैं आपको। कश्यप मुनि की दो पत्नियां थी, कद्रु और विनीता। कद्रु के द्वारा सब वंश का जन्म हुआ, विनीता के द्वारा गरुड़ जी और पक्षी वंश का जन्म। दोनों बहनें भी थी और सौतन भी थी। दोनों एक बार सर्प लगी तो सर्प ने विनीता हार गई, तो विनीता को आजीवन दास्यता का मतलब सर्प के अनुसार स्वीकार करना पड़ा। फिर गरुड़ का जन्म हुआ, फिर दास्य को चलता रहा। गरुड़ ने कहा माँ कब तक दास्यत्व चलेगा? तो गरुड़ जी की माता ने कहा आपके दास्यत्व जिसने दिया है उससे आप ये प्रश्न पूछ सकते हो, मुक्त होना है। तो दास्यत्व का प्रश्न पूछकर गरुड़ जी कद्रु के पास गए। तो कद्रु ने कहा देखो कैसा है ना, जैसे जो आप मुझे बोले तो भी मुझे माँ पर सब फिर दे दूंगा। आप बोलेंगे फिर आसमान का छान लेके आप मैं दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? इम्पॉसिबल है, मुझे देना नहीं। यू अंडरस्टैंड ना, ऐसे कहना मतलब क्या है? जाओ आप। तो उन्होंने ऐसा ही बताया उनको, उन्होंने कहा कि जब अगर आप देवताओं के कस्टडी में सुरक्षित अमृत मेरे सर को बच्चों के लिए लेके आएंगे तो मैं आपको दासता से मुक्त कर सकती हूँ, यानी कभी भी मुक्त नहीं करूँगा। लेकिन गरुड़ जी ने वो अपने निश्चय पूर्वक समझा कर दिया कि मैं स्वर्ग लोक में जाकर चंद्र लोक में जाकर चंद्र के कस्टडी में जो रखा हुआ है सुरक्षित अमृत लेकर आऊंगा और ये मेरे मेरे भाइयों को क्या कहते हैं। तो बहुत बड़ा एक अध्याय है महाभारत में गरुड़ महात्मा, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा 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 प्रचंड पराक्रम करके अमृत प्राप्त किया। और वो अमृत प्राप्त करके जब वो आ रहे थे रस्ते में, तो आते हुए उनको जमुना जी का दर्शन हुआ वृंदावन में। और वो अभी मैंने कल भी बताया था कि जब हम किसी भी नदी को देखते हैं तो अगर हमको हमारे वाहन से या पैदल उतर कर नदी को प्रणाम करना मुमकिन नहीं है तो हमें कम से कम गाड़ी में बैठकर नदी को मन से प्रणाम करना चाहिए। शिष्टाचार किए बिना आर्य व्यक्ति जो है वो आगे नहीं बढ़ता। तो गरुड़ जी को ये पता था, गरुड़ जी परम वैष्णव भी हैं, स्वयं विष्णु तत्व भी हैं। तो उन्होंने वो कलश जो है अमृत का, अभी कोई इसमें झगड़ा वगैरह कुछ नहीं, कोई पीछे नहीं लग रहा उनको, खाली लेकर उनको जाना है शांति से। उन्होंने वो कालिया घाट पर जो कदम का पेड़ है उस पर ये कलश रखा और उत्तरायण से नीचे गए, उन्होंने आचमन किया, ने स्नान किया, संध्या वंदन किया, प्रणाम किया और फिर जब आए तो त्रिकालदर्शी होने के नाते उनको ये पता चला कि भविष्य में यहाँ पर द्वापर के वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में कृष्ण आएंगे, इस पेड़ पर चढ़ेंगे और जमुना जी ने कुछ कालिया का दमन करेंगे। उन्होंने कुछ अमृत के बिंदु स्वेच्छा से उस पेड़ पर छिड़के और फिर वो कलश लेकर वो उड़े और फिर कदू के पास आए और कदू को उन्होंने ये अमृत का कलश दे दिया। तो ये अमृत कलश कालिया घाट के कदम के वृक्ष पर रखने के उपलक्ष्य में एक मूल कुंभ मेला होता है वृंदावन धाम में और वो अमृत कलश के बिंदु शांति से प्रेम से छिड़के गए थे, क्योंकि संघर्ष और कोई ऐसी चिंता की बात नहीं थी। आज भी हर 12 वर्ष में वृंदावन धाम में यमुना किनारे कालिया घाट पर और उससे आगे किसी घाट तक एक मूल कुंभ मेला लगता है। उन्होंने स्वयं आते ही किया ये बात आपको बताना मुझे जरूरी समझा इसके बारे में हरे कृष्ण। दूसरी बात यह है कि नासिक क्षेत्र जो है इसमें अनंत लीलाएं हैं, एक लीला तो कुंभ मेला की है यहाँ और प्रभु रामचंद्र दंडकारण्य के ऋषियों की विनंती पर चित्रकूट का 13 वर्ष का अपना निवास छोड़कर वो दंडकारण्य आए और जब वो आए तो यहाँ पर दंडकारण्य में बहुत बहुत नंबर में बहुत ऋषि यहाँ पर तप कर रहे थे। उसमें से कुछ ऋषि अपने तप में केवल तप में व्यस्त नहीं थे, भक्ति मार्ग में नहीं थे। तप और भक्ति मार्ग अलग अलग है। तप ये जो है ना वो कठोरता से तो नियम पालन करते हैं इंद्रियों को दमन करने के लिए। जरूरी नहीं है कि हर समय तप का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना हो, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि सब लोग तप भगवान को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। ऐसे तप की मूलभूत व्याख्या ये है कि वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए ही कुछ हम असुविधाएँ स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, कोई तप करते हैं। लेकिन सब लोग तप उसके लिए नहीं करते हैं क्योंकि सब लोग भगवान को प्राप्त नहीं करते। लेकिन जो लोग दिव्य दृष्टि से साधना भक्ति में उन्नत होते हैं वो तप का प्रयोजन भगवान की भक्ति है। ऐसे बहुत सारे संत महापुरुष थे जो तप के द्वारा भक्ति के मार्ग में थे और भक्ति के मार्ग में भी वो श्रेष्ठ स्तर पर पहुँच चुके थे। यानी भक्ति के मार्ग में बहुत सारे स्तर होते हैं, उसमें एक होता है प्रेम जो गोपियों को प्राप्त है वो भाव भी निर्माण होता है। तो कुछ ऋषि थे उनके मन में ये प्रेम भाव जैसे पति पत्नी के बीच में होता है, प्रिया प्रीतम के बीच में होता है, ये अंतिम चरण है भक्ति का, माधुर्य भक्ति, वो भाव को कुछ पुरुष शरीर में रहते हुए ऋषिगणों ने प्राप्त किया। प्रभु रामचंद्र का दर्शन करते ही उनके मन में वो भाव और द्विगुणित हो गया, विद्युत हो गया। द फीलिंग ऑफ लव, कॉन्जुगल लव दैट दे हैड फॉर द लॉर्ड इंक्रीज मिलियन फोल्ड व्हेन दे सॉ द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड। और उन्होंने प्रत्यक्ष जाकर एक जगह लिखा है कि उन्होंने पूछा, लेकिन एक जगह लिखा है कि उन्होंने पूछा भी जरूर नहीं, केवल मन में ही संवाद किया, मन में ही भाव प्रकट किया। और प्रभु तो अंतर्यामी है, प्रभु मन में समझ गए कि उनके मन में क्या भाव है। तो उन्होंने स्वयं आकर वहाँ पर उनको वो उत्तर दिया कि इस अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं एक पत्नी व्रत में हूँ, मैं एक पत्नी के अलावा और कोई पत्नी को स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अगले अवतार में मैं पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आऊँगा और तब मैं आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करूँगा। तो ये ऋषि जो है वो अगले जन्म में गोपी बने, गोपियों के घर में, गोपालों के घर में वृंदावन में जन्म लिया। इनको कहते हैं ऋषि चारी गोपियाँ, जो पहले ऋषि थे। ऐसे क्या कहते हैं उसको, सैकड़ों प्रकार की गोपियाँ हैं, कहते हैं श्रुति चारी गोपियाँ, जो वेद स्वयं वेद जो है वो देवियाँ बनकर भगवान के पास आए। और वो भी कहानी लंबी है, उसमें भी भगवान ने उनको अगले जन्म के बारे में बताया। तो वो श्रुति चारी गोपियाँ बनी, श्रुति यानी वेद, जो श्रवण के माध्यम से सुनते हैं, सुनते थे वापर के अंत तक, उसके बाद में श्रुतियों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन वो श्रुति ही नाम था। फिर कुछ समुद्र कन्याएं शेष नाग का रूप देकर आकर्षित हो गई थी, तो उन्होंने शेष नाग के साथ में माधुरी लीला करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा अगले जन्म में बलराम जी के रूप में आएंगे तो हम आपसे लीला करेंगे। तो वो बलराम जी की गोपियाँ बन गई, नाग कन्या, नागलक्ष्मी। भगवान रामचंद्र जो है वो इतने 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 अति कोमल अति सुकुमार सुंदर पुरुष थे। फिर जब मिथिला गए विवाह करने के लिए तो मिथिला की और भी कन्याएं उन पर आकर्षित हो गई। पंडारी प्रस्ताव रखाते हैं उनसे विवाह करने का, उन्होंने कहा कि लेकर नहीं आ पाई, तो वो बनी मिथिला वासिनी गोपियाँ। जब प्रभु रामचंद्र कौशल देश में अपने कौशल्य माता के गाँव गए थे, घर गए थे, वहाँ पर भी कन्याएं उन पर आकर्षित हो गई थी। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट लाइफ है, तो वो बड़े कौशल वासिनी गोपियाँ। जब सीता जी को विवाह करके लौटे तो दोनों जोड़ी इतने सुंदर लग रहे थे कि कुछ युवतियाँ अयोध्या की युवतियाँ भी प्रभु राम से आकर्षित हो गई, तो वो अयोध्या वासिनी गोपी बनी। ऐसे बहुत बहुत प्रकार की गोपियाँ हैं, एक प्रकार की गोपियाँ हैं। फिर सबकी मिला वृंदावन में और प्रभु ने सबको सबकी इच्छाएँ पूर्ण की। तो यहाँ पर गंडकारण में ऋषिचारी गोपियों का सम्मान है। सभी हम थोड़ा सा ये जो भूमि है ये विशेष रूप से तीर्थ स्थान है, क्योंकि प्रभु का जो निज धाम है वो अयोध्या है। और अयोध्या से जब भगवान अपने निज धाम से निकलते हैं और धाम से दूर जाकर लीला करते हैं तो उस स्थान को तीर्थ कहते हैं, जहाँ पर भगवान जाकर लीला करते हैं। तो चित्रकूट तीर्थ है, दंडकारण्य में तीर्थ है, नासिक मंसूरी तीर्थ है, आगे पंपा सरोवर तीर्थ है, आगे जाकर रामेश्वर भी तीर्थ है। तो विशेष रूप में प्रभु की लीला यहाँ पर क्या है, जन कल्याण के लिए किया हुआ त्याग यहाँ पर प्रकट हुआ। वैसे प्रभु की क्या जरूरत है, आराम से रहते, युवराज तो बने हुए थे, कुछ समय बाद राजा भी बनने वाले थे, आराम से रहते वहाँ पर। लेकिन देवताओं ने बहुत पहले आकर निवेदन दिया था कि रावण के आतंक से हम कई युगों से परेशान हैं। ऐसा नहीं कि वो केवल राम आए कभी कुछ देर पहले आए थे, ऐसा मत नहीं। रावण का जन्म जो है ना वो कई 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 युगों के पहले होते हैं। कुछ लोग कहते हैं रावण 7 लाख वर्ष का है, क्योंकि रघु राजा के समय भी उसकी लीला है। रघु राजा जानते ना, उसके नाम से रघुवंश बना हुआ है। वो रघु राजा जो थे वो इतने शक्तिशाली थे कि वो त्रिलोक में विजयी थे। तो रावण उस समय भी था, रावण को रघु का ये जो तेज है ना वो यश स्वयं में हुआ। एको हम विजय नास्ती न भूतो न भविष्य, ये उसका भाव था कि मैं ही अकेला हूँ, मेरे सामने कुछ नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो मैं नष्ट होना चाहिए। तो वो पहुंचे रघु राजा के पास और वो जानते थे कि ये बहुत पावरफुल है। तो वो जब संध्या में बैठे ना दोपहर को, तब ये अटैक करने के लिए पहुंचे। रावण ने बाण मारा तो बाण लगा ही नहीं, किधर ही घूम गया बाण। बहुत देर कोशिश किया लेकिन रघु राजा को रावण का बाण ही नहीं लगा। तो इधर उधर उन्होंने डिस्गाइज मतलब रूप बदल के इंक्वायरी की, इसका क्या महात्म्य है। उनका ये स्वयं पराक्रमी तो है ही, लेकिन जो पत्नी है वो अति 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 पतिव्रता है। उसका पतिव्रत के सतीत्व इतना पावरफुल है कि इसके वजह से ये अभेद्य है, उसको कोई बदल नहीं कर सकता है, जीत नहीं सकता है। तो रावण की मति कैसी, वो मेरे पावर का यूज करके मैं इसके ही सतीत्व नष्ट कर दूंगा, सतीत्व ही भंग कर दूंगा। तो वो भेष बदल करके पहुंचे, प्रभु का रूप लेकर पहुंचे अपने घर पे, ऐसे कि जैसे संध्या वंदन करके लौट रहे घर पे। और सोचा कि जाकर उसका पतिव्रत भंग कर दूंगा, लेकिन वो पतिव्रता नारी इतनी पवित्र थी कि दूर से ही पहचान गई कि राक्षस है, मेरे पति का रूप लेके आ रहा है। तो उसे शाप लेना चाहा उसको, तो ये गिरगिरा है चरणों में गिर गया, थोड़े थोड़े माफ करो। और वो भी त्रिकालदर्शी थे रघु, वहाँ पर गायत्री जब कर रहे हैं संध्या वंदन, उनको अंदर ये प्रेरणा हुई कि ये व्यक्ति जो मुझे मारने का प्रयास कर रहा था वो भी उसको पता था, लेकिन उसने दुर्लक्ष किया, क्योंकि डोंट बॉदर को नो धनुष उठा के मान। लेकिन जब उनको ये ध्यान में साक्षात्कार हुआ कि यही व्यक्ति इतना गुस्साती कर रहा है कि मेरे पत्नी के पास जाकर रूप बदल कर उसका सतीत्व को भंग करने का प्रयास कर रहा है, तो यहाँ पर एक मंत्र उत्पन्न करके बाण निर्माण किया। और ऐसा नहीं कि वो सामने आने से मारूंगा, जहाँ कहीं भी है वहीं से उसका संधान किया उसने, और छोड़ने वाला था रावण के ऊपर। हमारा रामायण तो अलग ही होता है ना, लेकिन तुरंत ब्रह्मा जी उतर आए तुरंत और रघु को दर्शन दिया। रघु रुको रुको रुको, रावण का वध होना ही है, होना ही चाहिए, लेकिन वो प्रभु रामचंद्र तुम्हारे वंश में जन्म लेंगे, और उनके हाथों ये लिखा हुआ है, तो अभी आप ऐसे करके इसे चेंज तो चेंज मत करो। तो स्लिप लिखा है उसका क्या होगा। रवि जी ने तुरंत वो सम्मान नहीं किया, तो कहा कि अभी बांध का क्या करूँ, क्योंकि बांध तो अभी कुछ नहीं है, कुछ रावण का वध करनी है। तो बलराम जी और ब्रह्मा जी कहते हैं, डोंट वरी, ये जो बाण है वो मेरे पास दे दो, मैं योग्य समय पर प्रभु राम को उसको दूंगा। और इसी के हाथ मेरे बाणों के, इसी बाण के कारण रावण का वध हुआ। तो वो बात वहाँ पर सेट हो गई, ठीक है। रावण को पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ उधर, रावण ने बहुत कपटी, उसने क्या किया, ब्रह्मा जी को तप करना शुरू किया। तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने कहा, भाई क्या चाहते हो, अभी पहले तो तप किया था मेरे बेटे ने, भी आपको शिव जी ने बहुत सारे कर दिया, हमने भी कर दिए, अभी क्या है, अभी वो बाण चाहिए मुझे। तो दे दिया उसको बाण। रावण को लगा, देखो मैं कितना गुस्सा है, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर रहा हूँ। देखो बाण लेकर लंका में गया और एक लंका के सबसे बड़े खंभे पे, मतलब पिलर था ना पिलर, उसको थोड़ा सा तोड़ा, अंदर बाण को गाड़ दिया, उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया पूरा पूरा, और ये केवल उसने मंडलगिरी को बताया कि ऐसा ऐसा ये कहानी है इस बाण की, और मैं आपको केवल बता रहा हूँ, किसी को नहीं बताना आपको। और रोज रावण सुबह उठकर अपना जो भी पूजन वूजन करने के बाद में इस खंभे को आकर हल्दी कुमकुम फूल अर्पण करता था और प्रणाम करके चला जाता था। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो अजय हो गया ना पूरा कम्प्लीट प्लेस। सो श्री रावण और राम का युद्ध हो रहा था ना, आप जानते हैं ना, वो हर बार बाण मारते थे तो हर बार हा 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 करके जो सर ऊपर निकलता था, जो कट इज हेड एंड वन ही हेड। तो फिर विभीषण जी थे, आपने बताया अभी क्या करें, अभी एक तो बताया गया कि उसकी अमृत छुपी जो है वो नाभि में है, उधर मारो, लेकिन दूसरा बताया उन्होंने कि ये बाण जो है ना वो लंका में कहीं है, हमको पता नहीं है, हमको खाली पता है कि लंका में है। तो रावण ने रावण ने जब संवाद किया था हनुमान जी वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा कि इधर लंका में है, डोंट वरी, उसको छोड़ दो। तो ऐसा भी नहीं पता था कि केवल मंडलगिरी को पता है, ऐसा भी उनको पता नहीं था, उनको जैसा एक ओवरऑल था कि लंका में कहीं वो बाण है। तो हनुमान जी ब्रह्मचारी है लेकिन सब गृहस्थों के रहस्य को जानते हैं, सीधे मंडलगिरी के पास ले गए और जोर जोर से ऐसे चिल्लाने लगे, रावण का वध हो रहा है, कितना बड़ा पराक्रमी रावण, चलो विजयी रावण, सबके देवताओं को परास्त करने वाला रावण, आप राम के सामने अभी मृत्यु होने ही जा रही है उसकी, ऐसे चिल्ला रहा है। तो मंडलगिरी ना एकदम हार में आ गई, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, उनको मारने वाला बाण तो इस खंभे में, जाके एक लात मारी खंभे पे, खंभे को सजा चल दिया, बाण लिया सीधे उड़े, राम को दिया, राम ने मारा और वध हो गया। ऐसा है। तो भैया कह रहा था ऐसे बात कहां से निकली थी कि रावण ये बहुत पुरातन काल से, तो ये रावण को मारने के लिए देवताओं ने निवेदन किया था, फिर वो कुछ काम की हो गया, फिर वो सारा सिस्टम राम ने जन्म लिया। तो राम ऐसे अयोध्या में रहकर आनंद नहीं ले सकते, उनको देवताओं की सेवा करनी है। कुछ ऐसा मेला हुई और प्रभु रामचंद्र को ऐन मौके पर कल राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन आज शाम को उनको बताया गया आपको वनवास जाना है, सब कुछ त्याग करके नंगे पैर पेड़ की खाल पहनकर पत्नी को लेकर भैया को लेकर जंगल में। तो हमारे भगवान जो है वो कितना जीव का हित चाहते हैं, देखो ये सब हमारे लिए आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग आनंद से रहेंगे, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो जब भी मैं नासिक के विषय में सोचता हूँ तो ये लगता है कि प्रभु में क्या जरूरत है वनवास करने में, क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, हम अपने मंत्र बोल कर उसको मार सकते थे ड्राइवरों को, यहाँ तक रेलवे किसी को भी ऐसा सा छोटा सा चक्र जो है अंदर उसके हृदय में अवतार लेकर वो चक्र से उसके आटरी काट दे देते रक्त बनने और वही बिना जड़ से अंदर से वो मर जाता है। लेकिन ये सब क्यों करते हैं, ताकि भक्तों को आनंद मिले, भक्तों को सुकून मिले। तो किसी भी तरह से प्रभु को वनवास का कष्ट भोगने की कोई जरूरत नहीं, एक प्रभु ने बहुत 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 कष्ट भोगा, मुझे नासिक दंडकारण में जो है सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी, चिंता, परेशानी, हृदय का दुख जो भी आप कह सकते हो तो इधर हुआ है। चित्रकूट में 13 साल वो बहुत आनंद से रहे, तो इसमें से भी प्रभु रामचंद्र तो गुरुकुल जा चुके थे, बचपन भैया सब, में कैसा होता है ना, बहुत कड़वी ट्रेनिंग होती है। राजा का पुत्र भी मखमल पे चलने वाला भी होगा, तो ये गुरुकुल में तो बहुत कड़वी ट्रेनिंग होती है। लकड़ी तोड़नी पड़ती है, जंगल में नीचे तय करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है, लिंगा डालना पड़ता है। तो प्रभु राम जी तो ओके है, वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, स्कूल भी कर सकते हैं। सीता का क्या है? सीता तो ऐसी अति कोमल सुकुमारी थी कि कभी भी उसने अपना पैर जमीन पर नहीं रखा था। हमेशा ऐसे कहते हैं कि होते ना वो पोलेंस, पोलेंस ऑफ द फ्लावर्स, वो फूल से पंखुड़ियों से भी अधिक कोमल होते हैं। वैसे मखमल के ऊपर स्तर रचाकर वो चलती थी, इतने उनके पैर कोमल थे। और फिर भी इतनी कोमल होने पर भी इतनी शक्तिशाली थी, लेकिन खेल खेल में उनकी जो फूलों की गेंद थी ना, वो ऐसा किसी ने कमरे में चली गई। तो वो कमरा जो था वो शिव धनुष रखा हुआ कमरा था, जो धरोहर में जनक महाराज के पास आया था, मिथिला देश में धरोहर में आया था। तो वो एक कमरे में, एक हॉल में रखा था नीचे, और वहाँ पर साल में एक बार उसका पूजन होता था, उत्सव होता था उसका। और 500 स्ट्रॉन्गेस्ट बैल जो उस बैलगाड़ी को लगाए गए हैं, ऐसे बैलगाड़ी से रखकर उसको बैल खींचते थे, और उठाने के लिए 500 मल्ल रखे गए थे जो उसको उठाते थे, और बैलगाड़ी में रखे थे, और 500 मल्ल उसको खींच कर जहाँ पर उत्सव होने वाला है वहाँ लेके आते। उस कमरे में गिरा तो ये सीखा गई, धनुष तो बॉल उठाया, बॉल लिया, धनुष रखा, चले गए। तो गार्ड लोग एकदम गए ना, दंग रह गए, अरे 500 मल्ल जिसको उठा सकते नहीं, वो ऐसा करके उठा रहे, तो ऐसा खेल खेल नहीं उठाया। और एक भी कहानी है, एक बार उसको फूल तोड़ने थे, छोटी सी थी वो, फूल बोल रखे थे, नीचे गई कमरे में, धनुष उठाया, और धनुष से सब फूल तोड़े उसने, ऐसे होता ना ऐसे, धनुष का धनुष से ऐसे होता ना ऐसे, ना दूरी होती है, तो बीचे वो ऐसे लगा लगा के फूल तोड़े, फिर लेकर पाती है धनुष रख दिया, और धनुष अपने घर के बाहर ऐसे दीवार को रगा के रखा, और नहीं रखे। उसके बाद परशुराम जी आए जनक महाराज से मिलते, तो तब तक हैरान हो गए थे, धनुष किधर गया? तब तक राज्य में थोड़ा सा हलचल मची थी कि भाई धनुष गायब हो गया, धनुष कैसे गायब हो गया? तो उसमें परशुराम ने देखा कि वो सीता के कक्ष के बाहर रखा हुआ है। तो सब लोग हैरान हो गए, आगे पता चला सीता जी ने उसको फूल करने का इस्तेमाल किया। तब जाकर परशुराम जी ने उनको बताया कि देखो इतनी शक्तिशाली कन्या है तुम्हारी, तुम भी जिसको नहीं उठा सकते, एक बच्ची ने उठाया खेल खेल में प्लेफुली, तो कम से कम इसका पति ऐसा होना चाहिए कि धनुष को स्वयं भर में उठा सके, कम से कम उठता हूँ, कम से कम। तो देखो देवताओं में मतलब भगवान के व्यक्तित्व में कैसा होता है, कोमलता भी होती है और शक्ति भी होती है ना। कितनी सुकुमारी सीता देवी, लेकिन शक्ति में कितनी महान थी, बच्ची के रूप में भी बड़ी नहीं हुई। तो वो स्वयंवर में रावण भी आया था, तो रावण ना वो उसको तस से मस भी नहीं कर सका, मतलब उसको जगह से भी हिला नहीं सका, यहाँ से वहाँ ऐसे इधर से इधर भी नहीं कर सका, हिला ही नहीं सका। और बड़े बड़े योद्धा उस समय के वो सब आए, वो कुछ नहीं कर सके, उसको बात अलग है। तो विवाह हुआ सीता देवी का, मैं ये सब बताऊंगा, मैं क्यों आपको आज बता रहा हूँ सब। तो विवाह जब हुआ तभी कौशल्या देवी और कौशल्या जी खास करके उनको मैंने सब पता किया था कि हमारी हमारी बहू कैसी है, तो उसकी सुकोमलता के विषय में बहुत सारा उनको जानकारी मिली थी। तो कभी जमीन पर पैर रखे नहीं, कहते हैं कि सीता देवी को पंती ना पंती, आपने कल दीपक लगाया था ना, उसके तो बहुत सारे दीपक थे, एक दीपक है ना, एक दीपक अगर लगाया तो उसके घर में से उसके पैरा सूखता था। कभी पूजा में उसके सामने कोई दीपक लगाया तो उसकी ड्राई आते हैं, ऐसी सुकुमल था उसकी। कई उसकी कहानियाँ ऐसी है कि सीता देवी थोड़ी सी भी गर्मी सहन नहीं कर सकती थी। तो सारा सब कौशल्या ने सुना था, तो कौशल्या ने ऐसा प्लानिंग कर रखा था कि जब मेरी बहू आएगी बाहर से आएगी, शादी मिथिला में होगी ना, तो वहाँ से आएगी अयोध्या में आएगी, तो ऐसा उन्होंने प्लानिंग किया था कि रथ में आएंगे लेके आएंगे, लेकिन जब महल में आएंगे तो महल में प्रवेश करने से उसके कक्ष तक जाने तक इतना अंतर है, मतलब समझो मैं यहाँ बैठा हूँ तो वहाँ पर लेट के जाना है। तो पूरा कहते हैं उन्होंने दुनिया भर के प्रोफेसर मंगाए थे, हजारों किलो केसर है, नॉट फ्लावर बटल्स, टू केसर, और उसके ऐसे चार चार इंच के छत लगे थे वहां से लेकर कमरे तक, ताकि वो उस पर चले, जिसे मकान को बिछाया था, पंखुड़िया भी अलग से थी, और ऐसे मैं उसको चला कर लेकर जाना है, और तुरंत फिर उसका कमरा गया, और कमरा थोड़ा ऊपर था उसे चलने के लिए। तो जब उतरी तो उसकी कौशल को बहुत टेंशन रखी है, कैसे होगा उसको कस्टम होना चाहिए। तो उसकी उम्र कितनी थी सीता की, किसी को पता है? विवाह के समय सीता देवी की उम्र कितनी थी? 6 साल, 6 ईयर बोलिए। तो जैसे उतरी है और कौशल्या उसको लेकर चल रही है, शंभु रामचंद्र के साथ में, लेकिन कौशल्या का विशेष कम चल रही है, साथ में लेकर चल रही है, उसके चेहरे को देख रही बार बार, तो सुकून से तो है। तो कुछ समय के बाद 10 कदम नहीं चली उस कदम उसके चेहरे पर से एक संकोच संकोच हुआ, तो कौशल्या ने पूछा बेटी क्या हो रही है, बताओ क्या हो रहा है, नहीं भैया कुछ नहीं, चलने लगे। फिर वापस वही चेहरा है, तो माँ ने पूछा बेटी बताओ क्यों, देखो अभी बताओ, अभी आपका घर है, आप पराई नहीं हो, आप किसी घर के हो, ये संकोच करोगे तो आगे कैसे होगा, अभी बता दो। तो बड़े संकोच से बोली भैया हमारे छोटे सर जो ना सुन रहे हैं, आपके जो बहन पर छोटे सर हैं उनको सुन रहे हैं, तो वो तो पैर की बात है ना, अभी चेहरा क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपकी सारी जो राशियाँ हैं ना मुझे टुक 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 देख रही है, मुझे नजरों की गर्मी मुझे सह नहीं हो रही है। आप सोचो कौशल्या ने क्या किया होगा, कौशल्या ने झट से अपने बहू को गोद में उठा लिया, जैसे बालक उठाए थे ना ऐसा गोद में उठा लिया, पैर तो लगेंगे नहीं, और अपना जो पल्लू है ना पूरा उस पर ढक लिया, तो उसको लेके नहीं, और इस तरह से बहू को कौशल्या उठाकर अपने महल में लेके गई। ये हुआ उसकी कोमलता का प्रमाण। तो वहाँ पर गई तो उन्होंने मुँह दिखाई का कार्यक्रम सोचा, हमारे भारत के स्थिति में एक नई बहू का मुँह देखने का कार्यक्रम होता है, और हर व्यक्ति जो मुँह देखेगा घूमन उठाकर उसको कुछ खरीद देनी होती है नई बहू को। तो सबसे पहला नंबर था कौशल्या का, तो कौशल्या ने जब अपनी बहू का मुँह देखा उस उत्सव में, पहले तो मुँह देखा था, लेकिन फिर भी वो मुँह दिखाई का एक उत्सव में जब मुँह देखा तो इतनी प्रसन्न हो गई, वो देखकर इतनी प्रसन्न हो गई थी, आँखों से आंसू आए उसको देखकर, उसने अपनी बहू का सौंदर्य देखा, और सोच रही थी मैं क्या दूँ मेरी बहू को इस दिन। तो मन से उसने ना अपने पति देव दशरथ महाराज का तिजोरी पूरा स्कैन कर दिया पूरा, और देखा कि इस पूरे तिजोरी में दशरथ महाराज के कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इसके मुख के बराबर नहीं हो सकता। फिर उसने अपने चिंतन में पूरे स्वर्ग का कुबेर का जो है ना कोष, वो सारा स्कैन कर लिया, उसमें भी सीता के मुख के बराबर कोई उसको वस्तु नहीं मिली। तो फिर वो परेशान हो गए कि मैंने वो दिशा में क्या दूँ, तो देना तो चाहिए एक बल, तो अपनी सभा में देखने लगी तो उसका मुँह राम के अपने दृष्टि राम के चेहरे पर शुरू हो गई, तो एक रत्न मेरा है जो मैं रत्न कह सकती हूँ। उसने राम का हाथ लिया और कहा कि आज तक ये मेरी प्रॉपर्टी थी, मैं आपको सौंप रही हूँ, ये मुँह दिखाई में प्रभु राम से मेरे फोन मिल गई। फिर कैकेयी ने उसका नंबर आया तो उसने ऑलरेडी कनक भवन बना कर रखा था, एक गोल्ड पैलेस बना कर रखा था, तो मुँह दिखाई को उसको भेज दिया। फिर सुमित्रा का नंबर आया, सुमित्रा भी उसको देख कर प्रेम के अश्रु बहा दिए, और उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न और लक्ष्मण ना शत्रुघ्न और लक्ष्मण सी है तो चल रही, ये दो को मैं माता हूँ और ये मातृत्व मेरा सबसे बड़ा अलंकार है, आज मैं ये मेरा मातृत्व जो है मेरे दो पुत्रों का वो आपको सुपुर्द करती हूँ, आज से वो आपके पुत्र होंगे, जो आप कहेंगे उसको पूरा करेंगे। ये सुनीता का सबसे बड़ा हिस्सा है। देखो कैसे ना लोन निकाल के 500 रुपये 1 लाख रुपये दे सकते हैं, दैट इज बट समथिंग लाइक दिस इज नॉट इजी टू डू। तो इस प्रकार से सुनीता ने अपने मातृत्व का भेद सीधा कर दिया कि आज से मेरे बेटे आपको माँ कहेंगे और आपकी आज्ञा पालन करेंगे, और ये उसने आखिर तक जताया। हाँ ऐसा नहीं किया, वनवास जा रहा था, लक्ष्मण को माता का वंदन करने आया तो कहते हैं कि सीता देवी का परमिशन लेना और आपकी माता है, और लक्ष्मण जी उर्मिला के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपके भैया की परमिशन लिया, मेरे समझे तो सैक्रीफाइस सैक्रीफाइस ही है, अपने लिए कुछ है ही नहीं, ये मर्यादा का स्टैंडर्ड परशुराम से भी अपने चरित्र में स्थापित किया। तो ऐसी सीता देवी जब वनवास जाने का समय आया तो वनवास का आदेश तो केवल परशुराम को था ना, थोड़ी सबको था। लेकिन सीता देवी का देखो थोड़ा सा लिखा है कि आपका संवाद उनका हुआ। प्रभु रामचंद्र तो उसको बोल रहे हैं अरे वो जंगल में तो बहुत ज्यादा प्राणी होते हैं, बहुत चूहा हाथी होते हैं, शेर होता है, सिंह होता है, भालू होते हैं, बहुत एक एक जानवर भी बहुत भयंकर होता है। तो वैसे राक्षस भी होते हैं, खाने वाले मनुष्य को खाते हैं, और कर्री धूप होती है, कर्री ठंड होती है, नंगे पैर चलना है, खाते होते हैं, सांप होते हैं, बिछेले बिच्छू होते हैं, ऐसे ऐसे भयंकर प्राणी होते हैं जो हम लोग वर्णन भी नहीं कर सकते। पेड़ भी होते हैं, नॉन वेज पेड़ है, पता है तुम जंगल में ऐसे पेड़ होते हैं जो आप उसके नीचे से गुजरेंगे ना तो आपको सब कर लेते हैं और अंदर आपको डायजेस्ट करके खा जाते हैं। पेड़ होते, पेड़ मांसाहारी पेड़ जंगल में होते, सब वर्णन करके सीता को परावृत करने का प्रयास किया। सीता क्या कहते हैं कि आपने मुझे वनवास के इतने दुखों का वर्णन किया, लेकिन मुझे केवल एक ही दुख का पता है जीवन में, आई नो ओनली वन रीजन, आपकी सेवा करने का मौका ना मिलना, इससे बड़ी कोई दुख की बात मुझे पता नहीं। ये सीधा देने का देखो तो मनुष्य जो है व्यक्ति इतनी अति सुकोमल, अति सुकुमारी, इतनी खुशांगी है वो, क्योंकि उसका चरित्र देखो कितने स्पष्ट है। उसको प्रभु ने कहा कि मैं जा रहा हूँ ज्येष्ठ पुत्र हूँ, आप ज्येष्ठ पुत्र की पुत्रवधु हो, आपका कर्तव्य है मेरे माता का पिताजी का देखभाल करना, दुख में रहेंगे उनका देखभाल करना, सेवा करना, आप रहो उनके पीछे, तो मेरा आदेश है आपके लिए। तो कहती है कि मिथिला मेरी शादी हुई थी ना तो भरी सभा में मेरे पिताजी के देश के पिताजी के सामने मैंने वादा किया था कि मैं सुख में और दुख में आपका साथ दूंगी। तो आप अपने पिता के दिए हुए वचन को सत्य करने में तुले हुए हो, यू आर हेलबेंट अपॉन फॉलोइंग योर फादर्स डिजायर, यू आर टेलिंग मी टू गेट द प्रॉमिस गाय गिवन बाय फादर। आप मुझे मेरे पिता के आदेश को तोड़ने के लिए प्रवृत्त कर रहे हो और खुद के आदेश पिता का पालन करने के लिए इतना क्या कहते हैं निश्चयपूर्वक जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी मेरे पिता के लिए वचन को तोड़ नहीं सकती हूँ, और अगर मैं आपके धर्म पत्नी वरदान नहीं हूँ तो आपका सुख में मैंने इतना साथ दिया, राजकुमारी बनी, मैं युवराज पत्नी बनी, युवराज वधु बनी, सब आनंद सत्कार मैंने स्वीकार किया, राजवैभव भी अनुभव किया। अभी आप नंगे पैर चलेंगे, कन्नगुण खाएंगे, जंगल में राक्षसों का चौपटों का सामना करेंगे, और मैं महल में बैठकर मकान मकबल पर चलती रहूँ और पंच पकवान में खाती रहूँ, हमारे मुझे नहीं इतना पॉसिबल। आप पता है अपने प्रभु को क्या कहती हैं, अच्छा ठीक है चलो, मतलब अभी प्रभु को जीत गई ना वो, प्रभु उसके परीक्षा में पास हो गई, चलो ठीक है चलो, आपको पता है आपको पैर की खाल करनी पड़ेगी, हाँ ठीक है आप भी करेंगे मैं भी करेंगे, तो कमी नहीं। सच्ची पतिव्रता नारी को कोई भी दुख नहीं है सिवाय पति के गिरे के, और पति को जितना कष्ट होगा उससे अधिक कष्ट भी सहन कर सकती है, इक्वालिटी इन हैप्पीनेस एंड सॉरो। तो क्या कहती है कि मैं ना आपके आगे आगे चलूंगी, तो प्रभु कहते हैं कि वन की बात कर रहे हैं, वनवास का प्लानिंग चल रहा है, तो मैं आगे आगे चलूंगी आपके, वो कैसे होता है, आप मेरी पत्नी हो, मैं आपके पीछे चल रहा हूँ, नहीं वो मैं जानती हूँ शिष्टाचार क्या है, क्योंकि मेरे आगे चलने मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आगे चलूंगी और मुझे पता चलेगा कि रास्ते में कांटा है, पत्थर है, शिव कंकड़ है, तो मैं जो मुझे चुभेगा तो मैं उसको हटाऊंगी और आपको रास्ता बताऊंगी। ये वही कन्या है, अभी का बता रहा हूँ बारह चाहे कहानी बता रही, वही कन्या है जिसको 4-5 इंच के टीके सर पर चलने पर कष्ट हो रहा था, नजरों को देखते हुए सब दासियाँ देख रही थी, जलन हो रही थी उनको, मतलब सहन हो रहा था वो रीत, अभी जंगल के एक मेरी घूमने को तैयार है और नंगे पैर घूमकर कांटों का खुद अनुभव करके पति के लिए कांटों निकाल कर रास्ता बनाने के लिए तैयार है, ये सीता। इसलिए आचार्य जो है ना वो बड़े आचार्य की सीता टिप्पणी करते हैं, जैसे रामायण राम का चरित्र का वर्णन नहीं है, इसलिए सीता यह नहीं है, सीता को छुपे हुए दिव्य चरित्र का वर्णन है पूरा, तो पूरा जो कथा है रामायण का सीता पर ही सेंटर है, सीता के ऊपर ही युद्ध युद्ध घूमते रहते हैं, तो रामायण का मुख्य किरदार जो है वो सीता है। इस प्रकार से सीता यहाँ पर अपने मन का भाव व्यक्त कर रही है, तो समझ सकते हैं कि आनंद किसमें है वास्तविक, अपने मन की विचारधारा बने, हाउ यू थिंक, उसको का आनंद है या दुख है, और सीता जी का माइंड सेट जो है ना वो फिक्स करे, यहाँ प्रभु राम का आनंद है तो मेरा आनंद। और एक बात वो कहती है, क्या मुझे बार बार अयोध्या में रहने को कह रही हो, कह रहे हो, लेकिन आपके बिना अयोध्या भी वनवास से अधिक कष्टमय है, और आपके साथ रंग भी राजमहल की तरह, क्योंकि दोनों में इंपॉर्टेंट चीज है आपका सानिध्य। आपका सानिध्य नहीं है तो अयोध्या के सारे आनंद भी ऐश्वर्य भी मेरे लिए तुच्छ है, और तुच्छ नहीं है, दर्दनाक है, सोर्स ऑफ मिजरी। और जंगल में कांटों में चलना है, कंदमूल खाना है, सांपों के बीच में रहना है, फिर भी आपका सानिध्य में महलों से भी अधिक खुश कर दिया। तो इतना कोमलता होने पर भी 13 वर्ष के शास्त्र में लिखा है रामायण में कि सबसे अच्छा पीरियड जो है रावण और राम और सीता के जीवन में वो 13 वर्ष था। उतना सानिध्य एकांत और अनडिस्टर्ब सिचुएशन उनको कभी नहीं मिला, पहले भी नहीं मिला, बाद में भी नहीं। तो इस प्रकार से रामायण जो है ना वो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, यहाँ तक कि दशम स्कंध को आरंभ करने के पहले सुखदेव जी नए स्कंध में रामायण शुरू करते हैं, नौ स्कंध पूरा वर्णन करते हैं और रामायण शुरू करते हैं। तो रामायण में ऐसे लग जाते हैं कि जो बुजुर्ग बोलते हैं उनको लगता है कि रामायण में गए 24,000 श्लोक, भागवत के होने वाले 18,000 श्लोक और 24,000 के लिखे लग गए तो 7 दिन तो कब तक खत्म हो जाएंगे और वो कुछ करना शुरू ही नहीं होगी। तो उन्होंने उनको सतर्क किया, तो उन्होंने फिर एक श्लोक में रामायण बता दिया, ये बस एक श्लोक की रामायण है, नौ स्कंध में है, तुरंत उसको प्राप्त किया, कंपन किया। लेकिन बताया उसका कारण क्या है, क्या इतना जरूरी था, स्किप कर सकते थे उसको, लेकिन नहीं स्किप किया उन्होंने, बताया थोड़ा छोटा सा क्यों नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि अगर श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को और उनके चरित्र को और लीलाओं को समझना है तो प्रभु रामचंद्र के द्वारा दिया दिए गए मर्यादाओं को पालन करना बहुत आवश्यक है। बिना प्रभु रामचंद्र के द्वारा दिए गए आदर्श और मर्यादा जब तक हम पालन नहीं करते, पुरुष और स्त्री दोनों, तो प्रभु के राम का आदर्श नहीं है, सीता का भी आदर्श है, लक्ष्मण का आदर्श है, भरत का है, शत्रुघ्न का है, दशरथ का है, कौशल्य का है, सब लोगों का वहाँ पर आदर्श व्यवहार है। तो ये सब लोगों का अलग अलग रोल में जो आदर्श मर्यादा व्यवहार दिया गया है वो पालन किए बिना हम श्री कृष्ण का चरित्र और व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते। इसलिए छोटा सा क्यों ना हो रामायण बीच में डाल दिया है और फिर कृष्ण के चरित्र का आरंभ किया, तो ऐसा समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम राम जैसा व्यवहार तो हम तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास कम से कम नहीं करते प्रामाणिकता से, तब तक श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम चरित्र का हमें आस्वादन नहीं कर सकते। तो यही उसका रहस्य। बोलो प्रभु रामचंद्र की, सीता मई की, दंडकारण्य की, उनके वनवास की, सब जानते हैं कि यहाँ पर कांचन रूप आया उसको लेकर सीता मई को गई, क्योंकि आप सीता जी जब से विवाह करके आई है कोई हक नहीं, कोई स्त्री हक नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई ऐसा डिमांड नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, युवराज पत्नी थी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी चाहिए मिल सकता था, लेकिन कभी भी उसने अपने प्रभु से कुछ नहीं मांगा और वनवास के कष्ट के लिए भी तैयार हो गई और वनवास गुजारा भी करती है, उसने भी कुछ नहीं मांगा। जो है वो जो लकड़ी आएगी उससे कुछ बनाना है, जो कंदमूल फल जड़ी बूटी मिलेगी उससे कुछ बनाना है, प्रभु खिलाना कुछ खाना है, उनके चरणों में सोना है, वो भी पढ़ सही अपर्ण को दी है। कोई शहरों का कोई आनंद नहीं है, कोई सेवक कोई चाकर कोई नहीं, फिर भी 14वें साल में उनके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है कि हमारा वनवास समाप्त होने वाला है, तो हिरण कितना अच्छा है, तो मुझे अगर घर में पेट के रूप में मिले बता दें तो उससे पालतू प्राणी पालतू प्राणी के तरह रखेंगे तो आनंद आएगा आगे के जीवन में, ऐसा अद्भुत हिरण होने को भी देखा नहीं। आचार्य बताते हैं कि हम लोग कितना भी विरक्त रखेंगे आयुष्य में जीवन में, लेकिन जैसे एक छोटी या बड़ी चीज पे आसक्त हो जाते हैं वही हमारी कमजोरी शुरू हो जाती है। आसक्ति इज इक्वल टू कमजोरी, यहाँ पर आसक्ति हम रखते हैं किसी भी वस्तु पर वहीं पर हमारी कमजोरी आरंभ होती है, वहीं पर बराबर माया हमको अटैक करती है, वहीं से हम परास्त होना आरंभ हो जाते हैं। तो सीता देवी अगर किसी चीज पे आसक्त हो गई तो वो भी मनुष्य जीवन में जब है मनुष्य शरीर में जब दी गई है यहाँ के सारे राजवंश विकसित हुआ है। मनुष्य जीवन का यही है, मनुष्य शरीर लेकर प्राप्त होते ही सारे त्रिगुणों का नियम, सारा कर्मों का नियम सब कुछ लागू हो जाता है। प्रभु भी उससे प्रिय नहीं है, प्रभु भी रो रहे हैं उसके हृदय में। घर के नगरों से गरीब हुआ है भाई देव, जब प्रभु आए लौट कर देखा लक्ष्मण को, बहुत उन्होंने डांटा कि मैंने तुझे कहा था सीता को मत छोड़ के आओ। तो रोते हुए लक्ष्मण ने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे कहा, मुझे सहन नहीं हो रहा है ये सब बातें कि मैं छोड़ के आया। तो फिर कहते प्रभु ने बाद में लक्ष्मण की क्षमा मांगे, जब ये कठोर वचन प्रभु ने सुने लक्ष्मण के मुख से सीता ने कहे थे। और फिर दोनों मिलकर फिर सीते सीते भाभी सीते भाभी सीते करके पुकारने लगे। कोई था नहीं जंगल में, नोबडी इज देयर, पेड़ और वृक्ष और बेलियां सब है। वो प्रभु जो है ना, वो सब बेलियों को, पेड़ों को, वन्य देवताओं को, ग्राम्य देवताओं को, सबको पुकार रहे हैं, कहीं आपने मेरे मृग नहीं सीता को देखा है? कृपया हे बेलियों, हे ग्राम्य देवताओं, हे वन्य देवताओं, बताए कहीं मेरी सुकोमल पत्नी को आपने देखा है? और फूट फूट के रो रहे हैं, शादी फूट फूट के रो रहे हैं। ऊपर से यहाँ पर शिव जी महाराज और पार्वती जी विमान से जा रहे हैं, तो शिव जी तो जानते हैं लेकिन पार्वती को लगता है थोड़ा सा मोह हो जाता है। वो कहते हैं तो प्रभु जी और सीता शंकर जी कहते हैं मेरे प्रभु हैं, पूजा कर रहे हैं। सीता कहते हैं आपके प्रभु, अरे वो सामान्य मनुष्य की तरह एक पत्नी के कोने पर इतना छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, कैसे प्रभु हो सकते हैं? तो सब सीधा प्रभु नहीं होते, वृत्ति का मूर्ति है वो, एक वैराग्य उनका ऐश्वर्य है। एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी इतना रो रहेगा, इतना रो रहे, इतना रो रहे कि पेड़ों को पूछ रहे मेरी पत्नी की तरह मेरी पत्नी, तो मुझे नहीं यकीन हो रहा है। तो शंकर जी शांति से बताया मेरे प्रभु मैं आराध्य भगवान है, नहीं मुझे नहीं मुझे परीक्षा करने की इच्छा। तो बहुत देर से उनका सम्मान उनका आकाश में हो रहा है कि नीचे प्रभु रो रहे हैं। तो बस ये चर्चा कर रहे हैं, तो शिव जी कहते हैं जाओ, तुम्हारी जो इच्छा है वो जाओ परीक्षा करने की। तो जिस वेश में सीता देवी थी, हाँ वो वल्कल पहने हुए और अनसुया के द्वारा दिए गए वो अलंकार थे ना, उनके अलंकार दिए थे ना, अनसुया ने उनको बहुत प्रेम से अपने अलंकार दिए थे। कहते जी कि आपके सतीत्व का रक्षण करने के लिए काम आएंगे, तो वनवास में भी होंगे ना तभी आप इसको पहनो। तो वो सब पहनकर वल्कल पहनकर सीता बनकर अचानक प्रकट हो गई उधर जहाँ प्रभु रो रहे थे। प्रभु ने क्या किया हुआ, तो साक्षात दंडवत प्रणाम किया, हे जगन माता भवानी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तब तुरंत पार्वती समझ गई, तुरंत अपने रूप में आ गई और प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु समझ गई कि वहाँ से प्रभु लीला कर रहे हैं, प्रभु लीला कर रहे हैं, हाँ तो सामान्य पुरुष सुन रहे हैं और अपने कृपा युक्ति लीला कर रहे हैं। तो लीला हुई थी उधर कपिल धारा धाम के पर जुटाने वाले, वहाँ पर ये प्रभु की परीक्षा से माया देवी ने पार्वती ने करने का प्रयास किया और प्रभु की दिव्यता का साक्षात्कार उनको मिला। तो दोनों ने आकर प्रभु को प्रणाम किया, फिर रास्ते रास्ते में चले गए हैं वो और वापस प्रभु ने करना शुरू किया। सो वो जो कपिलधारा क्षेत्र है ना, आप लोग मुझे कितने लोग गए कपिलधारा में, सबको जाना चाहिए। मैं तो ना एक मेरा अनुभव बताता हूँ कि जो लोग तीर्थ में या धाम में जन्म लेते हैं वो अधिकतर उसके बारे में कुछ नहीं जानते। और शास्त्र में भी लिखा है कि हरिद्वार में जन्म लिए लोग जो हैं वो नीचे साउथ इंडिया में जाके नदी में स्नान कर गए। तो साउथ इंडिया में जो गोदावरी के पास रहते हैं वो जाकर हरिद्वार में स्नान कर गए। और मैं भी उत्तरकाशी में बहुत दिन रहता हूँ, तो मैं कभी कभी उत्तरकाशी का मार्केट है ना गंगा के किनारे पे एक्चुअली, तो मुझे ऐसा मोह हुआ कि भाग्यवान लोग रोज स्नान करते हैं। तो मैं कई दुकान में कुछ खरीदने के लिए गया, बोला आपने स्नान किया गंगा जी में, तो 7 साल से नहीं किया स्नान, लेकिन हम लोग हरिद्वार में उधर गए क्या वो स्नान करते हैं। दिस इज यूजुअल। तो होता क्या है ना कि अपने पास जो वस्तु होती है उसके अंदर कीमत नहीं होती, तो दूर होती उसकी वैल्यू होती है। लेकिन अगर हम भक्ति में हैं तो हमको अपने पास क्या धन है, हमारा क्या सौभाग्य है, कहाँ हमें जन्म लिया है, तो भूमि का गौरव क्या है, उसकी लीला क्या है, उसका पता होना चाहिए ताकि हम उसका पूरा लाभ उठा सकें। नहीं तो जहाँ पर जन्म लिया है वहाँ पर हमें पूरे अपने काम में गृहस्थी में व्यस्त रहते हैं, साल में एक बार उठ के चले जाते थे। तो कपिलधारा क्षेत्र बहुत यहाँ का यहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, जैसे कि साकेत है यहाँ पर, जहाँ पर जटायु का वध हुआ था, वो भी इसी क्षेत्र में दंडक वध हुआ। यहाँ पर अगस्त्य मुनि का आश्रम है, जहाँ पर प्रभु ने सलाह ली थी कहाँ रहना है, तो अगस्त्य मुनि ने कहा था कि आप राम यानी कि बुद्ध गोदावरी का दक्षिण दिशा होती है, दक्षिणावर्ती होते हैं वहाँ पर रहो। तो काल राम मंदिर जहाँ पर है वहाँ पर प्रभु ने निवास किया, उसमें ने पर्ण को दिया। फिर कपिलधारा क्षेत्र है, इसका मैं आपको बताऊंगा आपको। और फिर चक्रतीर्थ है, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे जगह है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ कायगा मंदिर के बारे में बताता हूँ। जब प्रभु यहाँ पर आए, यहाँ पर बहुत राक्षस थे, तो प्रभु तो इधर चित्रकूट में अधिक सत्संग कब राक्षस का वध किया, चंद्रकूट में आने के बाद राक्षस वध अधिक हुआ, सब जगह आतंक था, तो बड़ा घर राक्षसों को मारने लगे एकदम होलसेल में। तो आम जनता भी नासिक मतलब या क्षेत्र की जो जनता थी वो भी डरने लगी थी, बाप रे ये तो बहुत काल है, स्वयं काल है, सबको वध कर दिया है। तो सीता देवी ने कहा प्रभु आप तो इतना ऐसा भयंकर हो सकता हो, क्रूरता से वध कर रहे हो कि आम जनता भी डरने लगी आपसे कि आप ही काल हो, आप ही यमराज के दूत हो। दोनों को भी लगा हाँ लेकिन राइट, मैं जनसेवा कर रहा हूँ लेकिन उसका एक अलग परिणाम भी हो रहा है। तो प्रभु ने धनुष से बाण काट लिया, हम ऐसे खड़े हो गए। अभय मुद्रा की खड़े हो गए, ऐसी अभय मुद्रा की मूर्ति विश्व में कहीं नहीं है भगवान की। यह आश्वासन देने के लिए डोंट वरी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी सेवा में हूँ, इसलिए प्रभु ऐसे खड़े। ये एक वहाँ की विशेष बात है। दूसरी बात वहाँ की एक विशेष ये है कि हनुमान जी जहाँ खड़े हैं वो मंदिर ऐसे बनाया गया है राजा ओड़े करके एक तरफ से, कि हनुमान जी की दृष्टि जो है ना वो आंखें जहाँ पर है वो सीधे प्रभु रामचंद्र के चरणों पर है, ऊपर नहीं देख रहे, जहाँ देख रहे हैं उसी लेवल पर प्रभु के चरण है। दूसरी बात है, तीसरी बात यह है कि एक राम शेष नाम का पहाड़ यहाँ पर ब्रह्मगिरी में, यहाँ पर प्रभु राम ने कुछ निवास किया था, वहाँ के पत्थर लाए गए थे इस मंदिर को बनाने के लिए, और वो मंदिर प्रभु जो पत्थर लाए गए थे शिलाएं उनको दूध के कुएं में भिगाया गया, एक कुआं बनाया गया जिसमें गांव के सारे लोग अपने घर का गाय का दूध लाते देते थे रोज, और वो कुआं भरते थे उसमें एक एक पत्थर कई समय तक भिगा कर फिर उसको लगाते थे। और आप गौर से देखिए उस मंदिर का जो पर्वत पत्थर है ना, इसके बीच में कुछ है ही नहीं, एक लाइन देखे दी है वो आपको। तो इतिहास में लिखा गया कि वो मक्खन और गुड़ और मधु और कुछ लोकल आइटम जैसे खाने वाले आइटम है ना, उसको मिश्रण करके उसको चिपकाया गया सकते। सारा मंदिर देखो आप, किधर भी देखिए, मंदिर के अंदर देखिए, गर्भगृह में देखिए, बाहर देखिए, पटांगण में देखिए, हनुमान जी के यहाँ पर देखिए, सभा में देखिए, कहीं भी देखिए, जो गेस्ट हाउस बनाया उसे उधर भी देखिए, ये सारे पत्थर जो है उस तरह से बनाए गए। और राजा इतना भक्त था, राजा ने अपना सारा तिजोरी खाली कर लिया इस मंदिर के बारे में, राम भक्त था। तो उसने क्या किया, अपना घर फाइनली ऐसा बनाया कि उसके मृत्यु सैया से श्वेत राम का दर्शन हुआ, काल राम मंदिर का, इसे मंदिर का नाम काल राम रखा गया कि जो सबके काल के समान थे, तो काराम नहीं है वर्ण काराम हो गया। और जो मूर्तियां हैं प्रभु रामचंद्र की, सीता की, लक्ष्मण की और हनुमान जी की, ये बालुका से बनी हुई है, सैंड से बनी हुई है, जो रामकुंड में प्राप्त हुई है कुछ वर्षों के बाद में, और उसको उसी मिश्रण से वार्निश किया गया है। आप गौर से देखेंगे ना तो मूर्तियां सब बालुका की है, सैंड की है, प्रभु रामचंद्र की नहीं है। तो उसको ऊपर से ये सब मिश्रण लगा कर उसको, ताकि वो झड़े नहीं मूर्ति, इतना अद्भुत मंदिर है। और वो पुजारी थे वहाँ पर हनुमान जी के सामने, वो आंखों में आंसू लाकर सब बता रहे थे। मुझे भी ध्यान में आया कि महान भक्त जो है ना वो ऐसा प्रसिद्ध तेजस्वी लंबी गाड़ी वाला आसन पर बैठा हुआ, चमक से कपड़े पहना हुआ, बहुत सारी मालाएं पहना हुआ, ऐसा नहीं होता है। महान भक्त जो बहुत सिंपल होता है, उसके पास जाकर बैठे सुनिए तो पता चलता है कितना महान भक्त। तो तुम सिंपल बातें बता रहे थे बोले, उसकी आंखों से फुट फुट के ऐसे आंसू आ रहे थे। ऐसे यहाँ के लोग हैं, पुराने लोग जिनके हृदय के कोने में ऐसी भक्ति राम की भरी हुई है, राम के प्रति आदर सम्मान बढ़ा हुआ है। लोगों को जब हम कृष्ण में रहते हैं, कृष्ण में आते हैं दर्शन करने के लिए, तो सदैव ना इस भाव को ग्रहण करने का प्रयास करना। सांग दर्शन तो करते हैं, कथा सुनते हैं, यहाँ पर सीधा देवी को रखा गया था गुफा में, जब प्रभु राम चंद्र सरस्वती का श्रृंगार करते थे, बचपन भारत पैदा देते थे, यहाँ पर सीधा का हरण किया गया है, राम की मूर्ति है, यहाँ पर कपोवधि शिवपुरा का इंतजाम यहाँ पर काम काम किए गए हैं। अच्छा है, जाना चाहिए प्रभु, क्या कहते हैं, अच्छे भक्तों के साथ, प्रेम भक्तों के साथ में कथा सुननी चाहिए। लेकिन साथ साथ हर सांग का जो कथा है उसका भाव और पूरे धाम का क्षेत्र का भाव भी ग्रहण करना चाहिए, तब हमारा यहाँ का निवास, यहाँ का जन्म, यहाँ की भेद, यहाँ का यात्रा तो सफल हो जाएगा। तो देखिए, सीता देवी को गुफा में रखते थे कभी भी हमेशा, और लक्ष्मण को बाहर खड़े करते थे। अभी देखिए, सीता देवी अकेली अंदर गुफा के अंदर, अपने भी दर्शन करने का कोई समय नहीं हुआ, अपने लोगों ने देखा होगा, बहुत अंदर जाना पड़ता है, कभी कभी झुक के बैठ के ऐसा फिसल के जाना पड़ता है, और अंदर बाहर फिर सीता की सुरक्षित जगह देते हैं, और सीता के पास फूल फ्री टाइम है, क्या कर रही है, लोग क्या करेंगे, तुरंत व्हाट्सएप निकलेंगे, यूट्यूब, फेसबुक, ये वो, इंस्टाग्राम, फलाना चीजें, दुनिया भर की बातें, दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे जहाँ कोई पंछी भी दिखता नहीं है, टिकट भी दिखता नहीं है, हाँ दुनिया की सारी बातें आप देखते रहेंगे उसको। लेकिन सीता गुफा के अंदर बहुत सारे विग्रह हैं, शंकर जी की लिंग है, वहाँ पर देवियों की मूर्तियाँ हैं, और सीता देवी दिन भर वहाँ पर सभी देवताओं की पूजा करती है। सो हाउ टू स्पेंड फ्री टाइम, इसका आदर्श सीता में दिया, देयर इज नो फ्री टाइम, भक्तों के लिए कोई फ्री टाइम नहीं होता, अगर फ्री टाइम होता भी है तो वो या तो जब करते हैं, तो कथा सुनते हैं, या तो सेवा करते हैं, या तो कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ रिकॉर्ड करते हैं। अभी कोरोना में सब लोग एकांत में आ गए थे गुफा में, सीता गुफा में फंस गए सब लोग, तो भक्तों ने क्या किया, वो तो बैठ के तुरंत फ्री चालू करके दुनिया भर प्रचार शुरू किया, तो पहले कभी हुआ नहीं था, वो घूमने शुरू हुआ है ना, कभी हमारा कनेक्शन नहीं हुआ, एक साथ में बैठकर इंग्लैंड के अमेरिका के सब लोग सुन रहे, हम भी यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं, घर में बैठकर जाना पड़ रहा है वहाँ पर। इसका मतलब है भक्तों की चेतना, जो सीता देवी की चेतना है, उसका उसको ग्रहण करना चाहिए। सी नेवर वेस्टेड अवर टाइम, अभी कबूल नॉट देयर टू सर्व, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कई देवी देवताओं की पूजा की, उसके सारे विग्रह नीचे अंदर सीता गुफा में बैठे। ये जो भाव है, जब हम सीता गुफा में जाएंगे, हमको ये भाव ग्रहण करना चाहिए, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम एनी टाइम इन लाइफ, ऑलवेज एंगेज इन सर्विस। लास्ट अभी कपिल भारत की एक और कहानी, वहाँ पर कपिल देव जो देवावृति के पुत्र हैं, उन्होंने देवावृति को शांति योग सुनाया था, तो पूरा शांति योग सुनाने के पश्चात देवावृति सिद्ध हो गई, और सिद्ध होकर देवावृति नदी का रूप धारण कर, जब उसकी मुक्ति हुई, जिसके बाद कलिंग हो गया, उद्धार हो गया, तो वो कपिला नदी बन गई, वहाँ से गाय के मुख से वो नदी निकलती है, जहाँ से पानी आता है किसी को पता नहीं, निरंतर जल प्रवाह होता है वहाँ पर, और वहाँ से वो आती है, फिर नासिक में आकर गोदावरी से मिलती है, कपिला गोदा संगम, यहाँ पर कपोवन में आप, तो वहाँ पर ही वो सात कुंड है, अग्निदेव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और आठवीं नाम है, आठ कुंड है टोटल, अग्निदेव के सानिध्य में साक्षी ने उन्होंने अपनी सीता को अग्निदेव को दिया था, और छाया सीता देवती को लिया था, जिसका हवन का वर्णन किया, कपिल महाराज ने मिला, और हनुमान जी ने भी एक राक्षस को वहाँ पर लगा दिया, जब ले आ रहे थे संजीवनी बेटे को, तो राक्षस ने उसी अगर उन पर हमला किया, तो हनुमान जी ने उस पहाड़ पर जो उसके ऊपर है उसको राक्षस का वध किया, जगह का नाम है काल नहीं काल और नहीं, इसे कपिल धारा के उसके ऐसे सुंदर सुंदर स्थान या उनका समुदाय है, ये पंचवटी नासिक क्षेत्र, आप सबको बधाई है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, अपने बाहर से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और विशेष लास्ट में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि नासिक के अधिकतर भक्त लोग जो हैं वो जगन्नाथपुरी की यात्रा में गए हैं, फिर भी हमें किसी किसी कमी महसूस नहीं हुई कि इतनी भक्तों की संख्या कम थी सेवा में करने में, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी एक भी चीज़ की कमी का अनुभव नहीं रहते, मैं सभी भक्तों का उनके भाव का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हम लोग सब लोग तीन बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे और सबको धन्यवाद अदा करेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।